जब अल्लाह की किताब को देखता हूँ मैं, ज़ाहिर है मैं अरबी नहीं जानता, जब मैं उसका तर्जुमा पढ़ता हूँ तो एक ज़ुबान से जब दूसरी ज़ुबान में उसको ट्रांसलेट करते हैं और जो लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ा जाता है, तो लफ्ज़ी तर्जुमे में जुमले टूट रहे होते हैं और रब्त महसूस नहीं होता, तो मुझे और ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है क्योंकि उसमें रब्त ही नहीं होता, मुझे समझ ही नहीं आ रहा होता। और अगर कोई रवां तर्जुमा पढ़ा जाता है तो रवां तर्जुमे में ब्रैकेट जो है वो मुतरजिम डालता है और ब्रैकेट में वो अपनी असल में जहन की चीज़ डाल देता है, वो अल्लाह का मंशा हो सकता है ना हो, तो मैं क्या करूं?
देखिए, ये बात ही ठीक नहीं है कि अल्लाह का मंशा वो आदमी भी समझने की कोशिश कर रहा है जो लफ्ज़ी तर्जुमा कर रहा है। इसलिए कि लफ्ज़ी तर्जुमे में अल्लाह ताला बताते हैं कि इस लफ्ज़ के नीचे ये तर्जुमा रख दो, वहाँ भी आपका अरबी ज़ुबान का इल्म, आपका फ़हम वही किरदार अदा करता है। तो इस वजह से ये जो कहीं ब्रैकेट लगानी पड़ जाती है या कहीं वजाहत करनी पड़ जाती है, तो ये आज की ज़ुबान में कुरान को मुंतकिल करने का अमल है। कुरान मजीद जिस तरह के उसलूब में नाजिल हुआ है, उसमें बहुत सी चीज़ें वो हैं कि जो आज हमारे यहाँ उस तरह राइज नहीं है।
ठीक
हम
है,
मौजूदा ज़माने में बहुत चूँके चुनाचे के साथ बात करने के आदी हो गए हैं। कुरान मजीद अदब का एक शहपारा है, उसमें वो असालीब मलहूज रखे गए हैं कि जो आला अदब के असालीब होते हैं। उसको जब आप नसर में, आपने देखा होगा किसी अच्छे शेर को जब हम नसर में बदलते हैं तो आपको उसमें रब्त के कुछ कलिमात डालने पड़ते हैं।
सही, जो
खास तौर पर अगर
महजूफ
आप
होते हैं
मसलन
तो।
बेदिल की शायरी को या उर्फी की शायरी को या गालिब की शायरी को अगर आप मुंतकिल करें, यानी किसी भी शेर को उठाएं और उसे नसर में मुंतकिल करें, तो आपको बहुत सी चीज़ें उसमें वजाहत के तौर पर कहनी पड़ती
खोलनी
हैं।
पड़ती है, ठीक
क्योंकि
है।
होता क्या है, उसमें इजाज़ का उसलूब होता है, बाहमी रब्त की बात चीज़ें जो हैं वो कारी पर छोड़ दी जाती हैं। तो कुरान मजीद भी एक अदब पारा है, तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि उसमें जो भी शख्स है, ये दीन का आलिम है, कुरान का आलिम है, उसने अरबी ज़ुबान पढ़ी है, कुरान मजीद पर गौर किया है, तो वो अपना फ़हम ही मुंतकिल करेगा आपको। तो इसमें कोई
ठीक है,
हरज की बात नहीं है।
ठीक
खुद मैंने अपने तर्जमे में बहुत सी जगहों के ऊपर वो मुकदमात खोल दिए, यानी बाज़ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो अरबी ज़ुबान में वैसे ही उमिट होती हैं, यानी जुमले के मुकाबिल की चीज़ें बाज़ औक़ात वैसे ही हज़्फ़ कर दी जाती हैं। आज के ज़माने में उनको खोलना ज़रूरी होता है।
ठीक
इसी तरह से बाज़ मौक़ों के ऊपर ज़ोरे बयान में या एक उसलूब की कुव्वत में बाज़ चीज़ें जो है वो कारी पर छोड़ दी जाती हैं, जुमला उस मुकाम पर ख़त्म कर दिया जाता है कि जिसमें चंद अल्फाज आप खुद उसमें मुकद्दर मान लेते हैं, उनको आज के दौर लोगों के लिए निकालना ज़रूरी हो जाता है।
ठीक है,
इसी तरह जब आयात आगे बढ़ रही होती हैं तो बीच में बाज़ ऐसी रब्त की चीज़ें हैं जो आज हम बोलने के आदी हैं, कुरान मजीद के ज़माने में उस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता था, यानी वो उसलूब नहीं था, तो उनको भी खोलना ज़रूरी है। इससे कभी तवाहुश नहीं होना चाहिए,
ठीक है,
यानी ये असल में खिदमत की है एक आदमी ने, उसने कुरान मजीद पर गौर करके उसका मुद्दा आपको मुंतकिल किया है। कुरान मजीद की एक तालीम है, वो आप लफ्जी तर्जुमा पढ़िए, वो आपको इस तरह का रवां तर्जुमा पढ़िए, वो बिल्कुल वाज़े हो जाएगा। वो तालीम क्या है, बड़ी सादा बात है, और वो ये है कि इस कायनात का एक परवरदिगार है, वही माबूद है, वही इस कायनात का बादशाह है, हम सबको उसकी बंदगी करनी है, हमें उसके बंदे बनकर रहना है, एक दिन उससे मुलाकात करनी है, अच्छा अमल करना है, आला अखलाक पर कायम रहना है। ये कुरान का मैसेज है, इसमें क्या प्रॉब्लम इनको होता है? ये जो मसाइल होते हैं ये एकेडमिक नौइयत के मसाइल हैं।
ठीक है,
तो अगर शौक है इस तरीके से, यानी इल्मी तौर पर कुरान मजीद की बात चीज़ों को समझने का, तो उसमें क्या हर्ज की बात है कि आपने एक साहिब इलम से एक चीज़ सीखी, फिर दूसरे से देख लीजिए, फिर तीसरे से देख लीजिए। इन दो चीज़ों को हमेशा अलग रखना चाहिए, यानी एक है कुरान का मैसेज, कुरान की हिदायत, जो मेरे लिए, आपके लिए, एक मजदूर के लिए, रेड़ी लगाने वाले के लिए, साइंसदान के लिए यकसा है, वो ये सादा बात है। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी तालीम में यही तरीका अख्तियार किया। अब देखिए, लोग बहुत कहते हैं कि जी अहले इलम में बड़े इख्तलाफात हो जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि हुजूर से जब जिब्रील अमीन ने गुफ्तगू की तो पूछा कि ईमान क्या है, जो पांच बातें बयान की, आज मुसलमानों में कौन उससे इख्तलाफ करता है? अच्छा, इस्लाम क्या है, उसका जो आपने जवाब दिया, कौन इख्तलाफ करता है?
कोई नहीं है।
तो इस वजह से असल दीन वो है, एक आम आदमी को उस पर अमल करना है। ये एकेडमिक बातें हैं कि अच्छा हजरत सुलेमान का तख्त लाने का क्या तरीका इख्तियार किया गया था, अच्छा ये बताइए फिरौन के साथ क्या मामला हुआ था, तो आपको इसका शौक है तो भाई ये इल्म की दुनिया है, उतरिए इसके अंदर, पढ़िए इसको। हमारे यहाँ दो चीज़ों को लोग खत मल कर डालते हैं।
कोई अगर मुझे गौर करना हो तो लफ्जी तर्जुमा इतना सुटेबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि वो लफ्जी तर्जुमे में जुमलों
लफ्जी
के
तर्जुमा
रब।
करना ही नहीं चाहिए कभी।
ठीक है,
यानी जिन लोगों ने लफ्जी तर्जुमा किया है वो भी बेचारे डरते थे कि कहीं लोग मारे ही ना हमें, वरना लफ्जी तर्जुमा कोई वजह नहीं है। आप किसी अंग्रेजी की अच्छी किताब का, किसी کسی اچھے شاعر کا ذرا لفظی ترجمہ کر کے دکھائیے مجھے کیا چیز رہ جائے گی اس میں. تو ترجمہ جو ہے وہ اس پورے مدعا کو ادا کرتا ہے. جو لوگ لفظی ترجمہ کرتے ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے صرف الفاظ کا ترجمہ کیا ہے, الفاظ کے باہمی ربط سے جو معنی صاف نکل رہے تھے وہ تو آپ نے چھوڑ ہی دیے,
ختم
بیان ہی نہیں کیا.
ٹھیک.